जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिता। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शना। श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय चरणारविंद भक्तिविदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगतगुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्री श्रीराधा वृंदावन चंद्र भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की गौनिताय की श्री प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद पांच अध्याय क्रमांक एक महाराज प्रियव्रत का चरित्र और श्लोक क्रमांक 24। ये श्लोक लिखा भी नहीं है और ये श्लोक थोड़ा लंबा है तो उसका हम श्लोक उच्चारण करते हैं। अथ च दुहितरम प्रजापतेर विश्वकर्मण उपये मे बर्हिष्मतिम नाम तस्यामुह वावा आत्मजान आत्मसमान शील गुण कर्म रूप वीर्य उदारान दश भावयान बभूवा कन्याम च यवीयसीम ऊर्जसुतीम नामः। अथ तत्पश्चात च भी दुहितरम पुत्री को प्रजापते प्रजापतियों में से एक की विश्वकर्मणः विश्वकर्म नामक उपये में ब्याह लिया बर्हिष्मतिम बर्हिष्मति को नाम नाम तस्याम उसमें ऊहा जैसा कि प्रसिद्ध है वावा आश्चर्यजनक आत्मजान पुत्रों को आत्मसमाना अपने ही सदृश शीला चरित्र गुण गुण कर्म कार्य रूप सुंदरता वीर्या बल उदारान जिसकी उदारता दश दस भावयाम भावयाम बभूवा उसके उत्पन्न हुई कन्याम कन्या च भी यवी असीम सबसे छोटी ऊर्जस्वतीम ऊर्जस्वती नाम नाम की अनुवाद तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा शिल प्रभुपाद की। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बरहिष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जस्वती था। तात्पर्य, महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा का आदेश पालन करके लिए ना केवल राज्यभर स्वीकार किया, वरना प्रजापतियों में से एक प्रजापति विश्वकर्म की पुत्री से विवाह भी किया। चूंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार संभालते थे, किंतु गृहस्थ आश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की। नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी मां ने दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी और 24 वर्ष की आयु में वे संन्यास ग्रहण करने जा रहे थे, तो भी अपनी मां के अनुरोध पर उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी मां से कहा, जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में हूं मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में ही बने रहना नहीं होता। वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। इस श्लोक में 3 शब्द ऊ हा वावा महत्व के हैं। इनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने संन्यास का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से संन्यास मार्ग का कोई संबंध नहीं है। ये कार्य तो भोग मार्ग के बताते हैं। अतः यह विस्मय की बात थी कि संन्यास मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग को स्वीकार कर लिया। कभी कभी मेरी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सन्यासी होते हुए भी मैं अपने शिष्यों के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुआ हूं। यहां पर बता दिया जाए कि चूंकि हमने कृष्ण भावनामृत संघ प्रारंभ किया है और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होने चाहिए, इसलिए आदर्श समाज को स्थापना के लिए हमें इसके कुछ सदस्यों के विवाह में भाग लेना ही चाहिए, भले ही हमने संन्यास क्यों न स्वीकार कर रखा हो। यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रमों तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली, जिसे दैव वर्णाश्रम कहते हैं, स्थापित करने में नहीं है। तो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दैव वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना करनी चाहिए थी। दैव वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि भगवद्गीता में कहा गया है कि इसके निर्धारक तत्व गुण तथा कर्म हैं। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी दैव वर्णाश्रम की सारे विश्व में पुनर्स्थापन की जानी चाहिए। मूर्ख आलोचकों के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में से यह एक है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಾಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ ನಮಃಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತಿಶೇ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೂ ದೀನಬಂಧೂ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ಶ್ರೀರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಹಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಚನಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುಜಿಕ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇನಾ ಬಹುತ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪ್ರಭುಜಿ ನೀಚೆ ಬೈಠತೆ ಹಮ್ ಊಪರ್ ಬೈಠತೆ ಹೈ ತೋ ಪ್ರಭುಜಿ ಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಕೃಪಾ ಹೈ ಹಮ್ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಸೇವಾ ಕುಚ್ ಕರ್ ಪಾ ರಹೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಸಭಿ ಭಕ್ತೋಂ ಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಚನಾ ಕರ್ತೆ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಭು ಜೊ ಉನ್ಹೊನೆ ಮುಜೆ ಪಹಲೆ ದಿನ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಕಾ ಮಾಲಾ ದಿಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಸಭಿ ಭಕ್ತ ಜೊ ಭಿ ಹೈ ಸಭಿ ಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇ ಹಮ್ ಕುಚ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಗೀತಾ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಕುಚ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಹೀ ಸುಂದರ ತರೀಕೆ ಸೇ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಆಯೆ ಹೈ ಆಜ್ ಕಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ ತೋ ಜಿಸ್ಮೇ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ವಿವಾಹ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ವರಿಷ್ಮತಿ ನಾಮ ಕಿ ಏಕ್ ಕನ್ಯಾ ಹೈ ಜೊ ಏಕ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ಪುತ್ರಿ ಥೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಾಮ ಕೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ಕನ್ಯಾ ಥೀ ಔರ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ನೇ ವರಿಷ್ಮತಿ ಸೇ 10 ಪುತ್ರ ಔರ್ ಏಕ್ ಪುತ್ರಿ ಊರ್ಜಸ್ವತಿ ಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಿಯಾ ಏಕ್ ಪುತ್ರಿ ಔರ್ 10 ಪುತ್ರ ಟೋಟಲ್ 11 ವಚ್ಚೆ ಥೇ ಔರ್ ಯೇ ಜೊ ಊರ್ಜಸ್ವತಿ ಥೀ ಊರ್ಜಸ್ವತಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕಾ ಪತ್ನಿ ಬನ್ ಗೈ ಔರ್ ಜಿನ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಬನ್ ಗೈ ದೇವಯಾನಿ ತೋ ಯೇ ದೇವಯಾನಿ ಕಾ ಔರ್ ಮಹಾರಾಜ ಯಯಾತಿ ಕಾ ಯಹಿ ಪರಂಪರಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಜನಮ ಹುವಾ ಹೈ ಯದುವಂಶ ಸೇ ತೋ ಯೇ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ಶಿಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಬತಾತೆ ಹೈ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ಹೀ ಸಂತಾನ ಸೇ ಕೈ ಸಾರೇ ಮನು ಭಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಯೇ ಔರ್ ಆಗೇ ಜಾಕರ್ ಔರ್ ಏಕ್ ಪತ್ನಿ ಹೈ ಉನ್ಸೆ ಭಿ ಉನ್ಹೊನೆ ಕುಚ್ ಪುತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಿಯೇ ಜೊ ಆಗೇ ಜಾಕರ್ ಮನು ಬನ್ ಗೇ ತೋ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಕಾ ಜೊ ಯೇ ಜೊ ಆಜ್ ಕಾ ಯೇ ಹೈ ಶಿಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ತರೀಕೆ ಸೇ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾ ಆದೇಶ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಕೆ ನಾ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಭರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ವರ್ನ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೋ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಿ ಪುತ್ರಿ ಸೇ ವಿವಾಹ ಭಿ ಕಿಯಾ तो पहले ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार उन्होंने ये गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, क्योंकि जरूरत थी। महाराज स्वयंभू मनु को लगा, ये जो प्रियव्रत महाराज है भगवान के शुद्ध भक्त भी है और क्वालिफाइड व्यक्ति है और फुल्ली रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तो राज्य चलाना है तो इर्रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति का काम नहीं है। तो पूरा जिम्मेदारी के साथ उनको एक व्यक्ति चाहिए था जो राज्य को संभाले। तो मनु महाराज ने सोचा कि प्रियव्रत महाराज ऑल्दो वेरी क्वालिफाइड, लेकिन अभी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, तो प्रियव्रत महाराज के पास मनु महाराज गए और उनको राज्य संभालने के लिए बुलाए। तो प्रियव्रत महाराज नारद मुनि जैसे एक शुद्ध भक्त के द्वारा गाइडेंस प्राप्त किए थे, इसलिए उन्होंने भगवान के भक्ति का जो कार्य में बहुत ही एक्सपर्ट थे और भगवान का भक्ति में सेवा में इतना आनंद अनुभव कर रहे थे, तो उनको लगा कि मुझे ऐसे कार्य में फंसना नहीं चाहिए जो मेरा भक्ति में बाधा ना हो। लेकिन बाद में जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास शिवजी और वेदों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि ये भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा है कि आप ये राजा बने। तो इतना भी बताते हैं कि भगवान का इच्छा को मैं खुद ब्रह्मा शिवजी और अन्य सारे कई महात्मा भी टालते नहीं है, इसलिए आप जो भी कर रहे हो, आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान का इच्छा को पूरा करना है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझाते हैं कि आपको स्वीकार करना चाहिए गृहस्थ आश्रम। इसलिए केवल आदेश, ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, उनका कोई भी रुचि नहीं था गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करने की। तो पिछले कल का श्लोक में बताया गया कि भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाली है। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कार्य भौतिक कलमशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस संसार पर शासन करने लगे। तो मानवर्धन मतलब अपने जो सीनियर लोगों का मानवर्धन करने के लिए एकमात्र कारण था, अपने खुद का इंद्र तृप्ति का रंच मात्र लेश मात्र उनका इच्छा नहीं था। तो अभी वो गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करने के बाद ना केवल राजा बने बल्कि एक पत्नी के साथ विवाह भी किया। तो मुझे भी ये सवाल था, पिछली बार जब राधेश्याम प्रभु क्लास दे रहे थे तो मुझे ऐसे दिमाग में गया कि राज्य तो स्वीकार करने की जरूरत था, ये पत्नी का क्या जरूरत था। ये जो श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, गौरनिताय की, शैल प्रभुपाद की, तो ये राज्य का जरूरत था, लेकिन पत्नी स्वीकार करने के बारे में कोई जरूरत के बारे में यहां पर नहीं दिखता है। तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम रह के राज्य संभाल सकते थे। मैंने राधेश्याम प्रभु को यही पूछा कि हमारे भी इस्कॉन में कई सारे जीबीसीस है जो सन्यासी है, वो भी संभाल रहे हैं, तो ये क्या जरूरत था कि उनको राजा बनने का कोई जरूरत था, क्योंकि पोस्ट खाली था तो उसको फिल अप कर सकते थे। और राजा प्रियव्रत महाराज ब्रह्मचारी रह के वो राज्य भी संभाल सकते थे, क्यों ये पत्नी स्वीकार करने का क्या जरूरत था? तो राधेश्याम प्रभु बताए कि देखिए हमारा मंदिर में मैं भी प्रेसिडेंट हूं और मुझे क्या करना पड़ता है, एक मंदिर को संभालना पड़ता है। ये मंदिर में ज्यादा करके ब्रह्मचारी है और कांग्रीगेशन डिवोटीज है, उनको संभालना पड़ता है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है, उनका कार्य क्या होता है, कभी कभी वो आतंकवादी अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद उनको वापस उस जगह में जाके उग्रवादी लोगों का एक कैंप को अटैक करके उनको ब्लास्ट करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा काम नहीं है। हम केवल ये ब्राह्मणिकल कार्य हम करते हैं, लेकिन देश की राजा हो उनका हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आज वही आया है यहाँ पर, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसका जवाब प्रभुपाद जी भी अपने तरीके से देते हैं कि शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि चूंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार संभालते, किंतु गृहस्थ आश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की। नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे। तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम मतलब अभी राजा बन गया है, उनका कर्तव्य है कि ये जो आश्रम में वो गए हैं, घर में रहते हैं और राजा बन गए हैं, तो वो ऐसा मतलब वो जो आश्रम का फुल जस्टिस करना चाहिए। राजा का कई सारे कर्तव्य होता है। तो आचार्य रत्न प्रभु भी उस दिन मुझे म्यूजिक क्लास दे रहा, क्वेश्चन पूछ रहा था, आचार्य रत्न प्रभु बता रहे थे कि वो एनकरेजमेंट देने के लिए है ना, तो एनकरेजमेंट देने के लिए पत्नी की जरूरत होती है। शिल प्रभुपाद बाद में पढ़ा तो प्रभुपाद जी भी वही सेम चीज लिखते हैं। तो जो सन्यासी होते हैं या ब्राह्मण होते हैं उनको पत्नी का एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, तो वर्णाश्रम धर्म में क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय और खास करके गृहस्थ आश्रम में रहता है, उनको पत्नी स्वीकार करना कंपलसरी है। क्योंकि ये जो प्रियव्रत महाराज था तो वर्णाश्रम धर्म को बहुत सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहा था, तो जो भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन नहीं बिताता था उसको हैवीली पनिशमेंट देता था। तो जो देखते थे कि ये जो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करते थे तो उनका पनिशमेंट सुन के ही लोग भाग जाते थे। तो ऐसे हर जो एक्सपर्ट राजा होते हैं तो वर्णाश्रम धर्म को बहुत सिस्टमेटिकली पालन करते हैं। तो राजा होने के नाते ये पनिशमेंट ये सब करते समय तो उनको एनकरेजमेंट करने के लिए एक पत्नी की जरूरत होती है। श्रील प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं कि सन्यासी और ब्राह्मणों को एनकरेजमेंट का जरूरत नहीं। मैं पढ़ता हूं एक्चुअली ये जो है, तो प्रभुपाद जी का वर्ड सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा, इसलिए प्रभुपाद जी का सेंटेंस एज इट इज पढ़ते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी से किसी विशेष धर्म का नहीं वर्णाश्रम धर्म का संकेत मिलता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों को जीवन लक्ष्य अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की ओर क्रमशः अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्म का धर्म के नियमों का पालन किया जाए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन में महाराज प्रियव्रत इतने कठोर थे कि इसकी उपेक्षा करने वाले
युद्ध के लिए ललकारे जाने या दंडित किए जाने की चेतावनी पर राजा से दूर भागते फिरते थे। दरअसल महाराज प्रियव्रत को अपने दृढ़ संकल्प के कारण लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके विपक्षी वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। कहा गया है, जो मानव समाज वर्णाश्रम धर्म का चालित नहीं है, वह बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज से बढ़कर नहीं है। अतः महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण तथा अद्वितीय शौर्य से वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ बनाए रखा। इस प्रकार का कठोर जागरूक जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण तथा सन्यासियों को स्त्रियों से किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु क्षत्रियों तथा गृहस्थों को अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी पत्नियों से प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, क्षत्रियों को राजकाज चलाने में प्रोत्साहन के लिए जाने के लिए कई पत्नियां रखने की छूट थी। कर्म तथा राजनीतिक कार्यों के जीवन में योग्य पत्नी का सहचर्य अनिवार्य है। अतः बरिश्मति का लाभ उठाया, क्योंकि वह स्त्रियोचित वेशभूषा, मुस्कान, अपने नारी सुलभ शारीरिक हाव भावों से अपने महान पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी। वह महाराज प्रियव्रत को प्रोत्साहित करती रहती थी, जिससे वे उचित रीति से शासन करते थे। इस श्लोक में अंत में ये बताया गया, किंतु वास्तव में वे अपने महात्मा पद के प्रति विज्ञ थे। यद्यपि ऊपर से वे कर्मी पति जैसा आचरण कर रहे थे, इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद राज्य किया। तो यहां बताते हैं कि जो महाराज प्रियव्रत है तो राजा थे और खास करके गृहस्थ आश्रम में थे, इसलिए उनको प्रोत्साहन की जरूरत थी। बरिश्मति नाम के सुंदर कन्या, जो विश्वकर्मा इंजीनियर ऑफ द हेवनली प्लैनेट प्रजापति है, तो ये प्रजापति विश्वकर्म के बेटी के साथ उन्होंने विवाह किया था। और विवाह करने के बाद जो बरिश्मति जो है उनको एकदम दक्ष पत्नी थी। उन्होंने जो प्रियव्रत महाराज का जो भी जरूरत है वो एकदम परफेक्टली निभाती थी, एकदम एक्सपर्ट थी। तो इसलिए जो घर गृहस्थी का टेंशन उनको नहीं था, तो उनको राज्य संभालना था और प्रोत्साहन की जरूरत था, इसलिए बरिश्मति का उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि शुरुआत में वर्णाश्रम का इसमें बता रहे थे प्रभुपाद जी। तो एक प्रभुपाद जी का मैंने मायापुर में प्रभुपाद जी कुछ वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे थे, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि 9.10.51 का परपोर्ट में शिल प्रभुपाद जी श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की गौर निताय की शिल प्रभुपाद की जाए। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि 9.10.51 का परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ वर्णाश्रम सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड देन कलयुग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सतयुग. कलयुग भी सतयुग बन सकता है अगर वर्णाश्रम को ठीक ठीक से हम पालन करेंगे. तो मैं देख रहा था कि अभी COVID-19 में हम अंदर बंद है तो सभी ब्रह्मचारी अपने अपने प्रोपेंसिटी के अनुसार सेवा कर रहे हैं. कोई गार्डन में कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहे हैं, जहां जहां जिनका जिनका इच्छा है वहां पर सेवा कर रहे हैं. तो सब लोग एकदम खुश है ना. ऐसा लग रहा है कि ये जो है सतयुग बन गया. ऊपर से हम ऐसा लग रहा है कि हम कोई जंगल में गया जहां कोई भी बाधा नहीं है, सिटी का कोई क्या कंटामिनेशन नहीं है, एकदम परफेक्टली हर व्यक्ति अपना इसमें सिचुएटेड है. तो प्रभुपाद जी बोलते वर्णाश्रम. वर्णाश्रम मतलब क्या है? मैं चैतन्य चरण प्रभु का एक क्लास सुन रहा था तो चैतन्य चरण प्रभु वहां पर बता रहे थे कि ये वर्णाश्रम मतलब दैवी वर्णाश्रम के बारे में वो बता रहे थे कि एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम इज नॉट सो मच ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू फोर लेवल्स. इट इज मोर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इन वे दैट कैन एनेबल पीपल टू कीप मूविंग टुवर्ड्स गॉड टू डू देयर मटेरियल वर्क इन ए वे दैट इज हार्मोनियस टू देयर बॉडीज. तो ये वैदिक वर्णाश्रम और दैवी वर्णाश्रम का बारे में श्रील प्रभुपाद जी बहुत वर्णन करते हैं अपने ग्रंथों में और प्रवचनों में. तो एक बार मैं उडुपी में वहां का एक सन्यासी से मिल रहा था तो वो सन्यासी बता रहे थे कि जो ब्राह्मण अभी जिनको ब्राह्मण शरीर मिला है वो पिछले जन्म में उन्होंने अच्छा कर्म किया है इसलिए उनको अभी ब्राह्मण शरीर मिला है. तो ब्राह्मण है अगर आपको ये दूसरा इसमें वर्ण में जन्म मिला है तो आप इस जन्म में ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं. अगर अच्छा कार्य करोगे तो अगले जन्म में आपको ब्राह्मण शरीर मिल सकता है. तो वो पूरा कन्विंस दे इसके बारे में. तो एक उडुपी का सन्यासी है तो उन्होंने एक प्रवचन में भी ऐसा मैंने सुना था तो वो तो क्लियरली बता रहे थे कि जो व्यक्ति ब्राह्मण में और ये दूसरा जात में फर्क क्या है तो ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाता है और बाकी लोग नॉनवेज खाते हैं. अगर ये लोग नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो ये भी ब्राह्मण कह सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है. तो असली में ब्राह्मण बनना पड़ेगा तो बनना है तो क्या करना है तो उनको अभी अच्छा कार्य करना है ताकि अगले जन्म में उनको इस पुण्य कर्म के द्वारा अगले जन्म में ब्राह्मण शरीर मिल सकता है. तो मैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ रहा था. श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छी तरह से रिफ्यूट करते हैं. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये अगले जन्म में व्यक्ति कैसे जाता है, शरीर का मृत्यु होता है तो वो सटल शरीर क्या करता है, दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर के साथ जो आत्मा है अगले शरीर प्रवेश करता है. अगर उसको अगले शरीर में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना है तो स्थूल शरीर यहां नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा अगले शरीर में प्रवेश करता है तो ब्राह्मण बन जाता है. लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो दीक्षा विधान है और दीक्षा के द्वारा व्यक्ति एक बोनाफाइड गुरु का आश्रय लिया है और भगवान का नाम जब जब करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान का नाम जप करने से उनका चित्त शुद्ध होके भगवान का सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाता है. खास करके अपना मन को भगवान का चरण में लगा देता है तो मन पूर्ण रूपेण भगवान का सेवा में लगा है तो ये जो मन और बुद्धि और अहंकार पूर्ण रूपेण भगवान का सेवा में लगने के वजह से तो अभी उनका जो ग्रॉस बॉडी भी है अभी बदल जाता है, सूक्ष्म शरीर अभी क्या है, चेंजिंग द बॉडी मीन्स द सोल इज गोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेटेरियल बॉडी टू अनदर मेटेरियल बॉडी, सो ऑलरेडी हिज माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो फुल्ली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, देर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग दैट मेटेरियल बॉडी, तो वो भौतिक शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये भगवान का विशेष कृपा है तो अभी ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है उनको, तो वैष्णव बन गया उससे भी ऊपर चला गया है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ब्रजवासी है तो एक्सटर्नली वो वैश्य थे लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे, वैष्णव थे, तो भगवान का सेवा में लगना इंपॉर्टेंट है। जो भी वर्ण है, आश्रम हो, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्र, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्था ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमें भगवान का भक्ति करने के लिए कंड्यूसिव हो सकता है, सपोर्टिव सिस्टम हो सकता है, बल्कि ये गोल ऑफ लाइफ नहीं है। ब्रह्मचारी बनना गोल ऑफ लाइफ नहीं है, सन्यासी बनना गोल ऑफ लाइफ नहीं है, गोल ऑफ लाइफ है कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना है, भगवान का सेवा करना है। तो भगवान का सेवा करते करते हमारा जो मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब कुछ एकदम शुद्ध हो जाता है, तो ये जीवन का लक्ष्य है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम आपको भगवान का भक्ति करने के लिए मदद कर रहा है तो एंगेज फुल्ली, क्योंकि यहां पर कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, है ना, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है, हमें से किसका ऐसा कोई पोस्ट का लिया चीफ मिनिस्टर बनने का ताकि उनको पोस्ट स्वीकार करने के लिए कोई ब्रह्मा जी आएगा हमको लेके जाने के लिए, ऐसा नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है वहां पर। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं उसको कार्य करने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, बाहर का काज कार्यकाज करने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक पैर में खड़े हैं, हमारी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, भगवान का भजन करना है, है ना, भगवान का कथा सुनना है, सेवा करना है। मैं कल देख रहा था राधेश्यामपुर का क्लास, राधेश्यामपुर का क्लास दे रहे थे तो सभी ब्रह्मचारी जो फूल का गार्लैंड का सेवा में लग रहे थे और हर व्यक्ति एकदम एक्सपर्ट बन गया, कितना सुंदर गार्लैंड वगैरह बना रहे थे, फूल कोई निकाल रहे हैं, कोई गार्लैंड बना रहे, कुछ अलग नया तरीके से, जो भी उनका इंजीनियरिंग इंटेलेक्चुअल वो सब कुछ उसमें लगा रहे थे, हालांकि फूल नहीं है, प्लास्टिक लगा रहे थे, वो लगा रहे थे। तो दिस इज एक्चुअली ये है असली में भगवान का सेवा में मन लगाने, ये ना के ना प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश। तो कैसे भी करके आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको वहां पर मन लग रहा है, फुल्ली एंगेज कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं हर व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, लेकिन एक महीना सबको करना ही है। अगर किसी का मन लगता है तो 12 महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो हम एक महीना क्या करते हैं, प्रभुपाद जी यही लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इन बिग स्केल यू कैनॉट मेक ऑल ऑफ देम ब्राह्मण्स एंड सन्यासीज, दैट इज नॉट पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद जी बिग स्केल में अगर आपको प्रचार करना है, बड़ा स्केल में प्रचार करना है तो आपको ब्राह्मण या सन्यासी बनाने की बनाएंगे तो सब लोग नहीं आने वाले, कुछ लोग आएंगे लेकिन सबको आप एंगेज नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। दिस इज स्मॉल स्केल, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड वी आर अट्रैक्टिंग, कितने लोगों का हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, वेरी इनसिग्निफिकेंट। बट इफ यू वॉन्ट टू मेक द होल ह्यूमन सोसाइटी परफेक्ट, then this Krishna consciousness movement should be introduced according to Krishna's instructions. If you want to do it in a large scale for the benefit of the whole human society, now we are picking up some of them, the best. That is one thing. But Sri Chaitanya Mahaprabhu said, paropakara. Why only certain section should be picked up? Let the whole mass of people get the benefit of it. But then it required to be systematic. Therefore, we have to introduce Varnashrama system. तो ये ब्राह्मण और सन्यासी बनाना है तो सबको हम ब्राह्मण सन्यासी नहीं बना सकते हैं, लेकिन वर्णाश्रम सिस्टम के द्वारा सबको कृष्ण भावनामृत देना है तो बिग स्केल में ये वर्णाश्रम सिस्टम बहुत ही जरूरत है। ये जो महाराज प्रियव्रत है, हालांकि गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और राजा बन गए थे, फिर भी अपने जो गुरु का रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। इसलिए पाला की गृहस्थ थे और राजा थे, फिर भी प्योर डिवोटी थे। तो हैविंग फुल्ली सरेंडर टू ग्रेट सेज देवर्षि चरणा अनुशयना, ही वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑल डिवोशनल प्रोसेस एंड रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि दंडवत प्रणामस्तान अनुपतितः, इमीडिएटली ऑफरिंग ऑबिसेंसेस टू स्पिरिचुअल मास्टर एंड बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग हिज डायरेक्शंस द स्टूडेंट बिकम्स एडवांस्ड। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड पेइंग ओबीसेंसेस, दंडवत प्रणाम और उनके सारे नियम को हम पालन करेंगे तो इमीडिएटली व्यक्ति एडवांसमेंट हो सकता है। और प्रियव्रत महाराज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहे थे, हर रोज गुरु का प्रणाम करते थे। तो खास करके मंदिर में भी हम जो रहते हैं, जैसे राधे श्याम प्रभु उस दिन बता रहे थे कि ये जो 64 प्रिंसिपल्स जो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, हालांकि कुछ कुछ नियम बहुत ही छोटे छोटे लगता है, फिर भी हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो भक्ति में बहुत जल्दी एडवांसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि छोटा नियम है एक चरणामृत लेना, तो लगता तो नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन वो जरूरी है। प्रणाम करना, गुरु पूजा अटेंड करना, मंगलारती अटेंड करना, तो और भागवतम क्लास में बैठना, तो ये मतलब गुरु ने, हमारा जो भी गुरु है श्रील प्रभुपाद जी के ये जो नियम के अनुसार जो इस्कॉन मंदिर में रहते हैं, खास करके ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो हमें ये बहुत ही आसानी से मिलता है। इसके लिए अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे लॉकडाउन में सारे गृहस्थ आश्रम डिवोटी तड़पते हैं मंदिर आने के लिए ना, हमारा इतना सौभाग्य मंदिर के अंदर ही है, तो ये सब कुछ हमको इजिली अवेलेबल है ना। तो इजिली अगर हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे तो भक्ति में और उत्साह बढ़ेगा और हम भक्ति को एकदम सीरियसली स्वीकार कर सकते हैं, जल्दी एडवांसमेंट भी हो सकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, एज लॉन्ग एज वन इज इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड ही हैज टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटेरियल नेचर। ये जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक हमें मेटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में रहना ही पड़ता है। तो कुंती महारानी का प्रार्थना के बारे में मैं सुन रहा था, श्रील प्रभुपाद जी क्लास में दे रहे थे। There are so many impediments to advance in spiritual life. First impediment is maya javani ka achanna. Maya ka itna pralobhan aata hai hamare liye. Hai na? Kitna sare pralobhan hai. To ek bar Gopal Krishna Maharaj bol rahe the ki aajkal maya ka prabhav lene ke liye bahar jana nahi padega. Aapke jeb ke andar hi na? Mobile hai. सारे इंटरनेट से आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। माया जैसे लोग एडवांसमेंट करते हैं, वो माया भी एडवांसमेंट करते रहती है। तो हमें फर्स्ट है, फर्स्ट इंपेडिमेंट इज माया जवनिका छन्न। माया आपको कड़ी तरीके से परीक्षा करने वाली है, किसी को भी इजीली एंटर करने के लिए छोड़ने वाली नहीं है। कड़ी तरीके से परीक्षा करके प्रभुपाद बोलते हैं कि माया इज चेकिंग व्हाई यू केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, वेदर टू सर्व कृष्ण और टू डिस्टर्ब कृष्ण। इफ शी सीज दैट यू आर परफेक्टली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड देन शी विल नॉट टच यू। इफ यू केम विद अल्टीरियर मोटिव देन यू विल बी टेस्टेड थॉरोली, है ना। तो ये है फर्स्ट इंपेडिमेंट। सेकेंड अज्ञा, वी आर इग्नोरेंट, वी आर फूल्स, वी आर रास्कल्स, दिस इज अनदर इंपेडिमेंट। वी डोंट नॉट नो द नेचर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, हाउ स्ट्रिंजेंट लॉज आर देयर, है ना। दुखालय अशाश्वतम, भगवान भगवतम एक बार बोलते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य है, असुख है, लोक है, दुखालय अशाश्वत है, मेटेरियल नेचर। एंड वी डो नॉट नो द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ सच्चिदानंद इट इज, कितना ब्लिसफुल है सच्चिदानंद, सत शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान से भरा है, आनंद से भरा है। वी डो नॉट नो द नेचर ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड, वी डो नॉट नो द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत के बारे में भी मालूम नहीं है, भौतिक जगत के बारे में अज्ञ है, इग्नोरेंट, फूल्स, रास्कल्स, वी आर डोंकीज, सिल्वर। और तीसरा अधोक्षजा, लॉर्ड इज बियॉन्ड योर सेंसेस, सो हाउ कैन वी अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट वन वे, व्हाट इज दैट, केवल भगवान का भक्ति है। भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान के कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रियव्रत वॉज ऑल्सो अंडर द मेटेरियल इन्फ्लुएंस, ऑल दो ही वॉज हैविंग ऑल द मेटेरियल ऑपुलेंसेस। सो इवन प्रियव्रत, प्रभुपाद बोलते हैं, ही वॉज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटेरियल नेचर। सो वेदर वन इज पुअर और रिच, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज पॉवर्टी एज वेल एज वेल्थ बोथ आर क्रिएटेड बाय मेटेरियल नेचर। तो ये मेटेरियल नेचर का ही क्रिएशंस है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ना। सो ये प्रकृति से ये उत्पन्न हुआ है। तो अल्टीमेटली हमें ये भगवान का भक्ति एकमात्र साधन है ताकि हमें ये भौतिक जगत से ऊपर उठाने के लिए, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इतना सुंदर एक भक्ति करने का एक मार्ग मिला है। और उसको जितना हम सीरियसली स्वीकार करेंगे उतना ही जल्दी हमारा एडवांसमेंट हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। राधेश्याम, यू वांट टू ऐड समथिंग?